ईरानी संस्कृति और कला।
श्रोताओं, कार्यक्रम ईरानी संस्कृति और कला की करने कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है स्वाति और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार करें। आज के कार्यक्रम में हम ईरान में इस्लाम और इस्लामी वास्तुकला व कला के ईरान में आगमन पर चर्चा करेंगे।
इस्लाम का अरब क्षेत्र में उदय हुआ, जिसे हिजाज भी कहा जाता है। उस समय के अरब कबायली हर साल मक्का जाते थे ताकि पूजा पाठ कर सकें और काबे के दर्शन करें। इस्लाम से पहले के अरबों की कला की कोई विशेष जानकारी नहीं थी। उनकी मुख्य कला व कविताएं लिखकर काबे की दीवारों पर लटका दी जाती थी। इसके अलावा उस युग में एक अन्य प्रचलित कला छागल, तंबुओं के फर्श, घोड़ों की जीन और ऊंट के पलायन आदि की सजावट हुआ करती थी।
पैगंबर इस्लाम का वर्ष 570 ईस्वी में मक्का में जन्म हुआ। वह बनी हाशिम परिवार और कुरैश कबीले से थे। 40 वर्ष की आयु में उन्हें विदित रूप से पैगंबरी का पद सौंपा गया। आरंभ में वह बहुत कम लोगों ने उन पर विश्वास जताया, लेकिन फिर उनके उच्च संदेश, प्रभावशाली बातों और अद्भुत व्यक्तित्व, कथनी व करनी में सच्चाई जैसे गुणों के कारण इस्लाम बहुत तेजी से फैलने लगा। सन 621 ईस्वी में पैगंबर इस्लाम ने मक्का से मदीना पलायन किया और यह पलायन इस्लामी कैलेंडर का आरंभ बिंदु बना। पैगंबर इस्लाम ने इस्लाम के मूल सिद्धांतों का वर्णन किया और एक ईश्वर में आस्था और अपनी पैगंबरी तथा प्रलय पर विश्वास को इस्लाम के मूल सिद्धांत बताए। इस्लाम अपने पारदर्शी व प्रभावशाली सिद्धांतों की वजह से तत्कालीन अरब जगत में बड़ी तेजी के साथ फैलने लगा और फिर उसका प्रभाव अरब जगत की सीमाओं से बाहर निकलने लगा।
हिजाज के आसपास के इलाकों में राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक उथल पुथल की वजह से इन इलाकों के लोगों ने दिल से इस्लाम का स्वागत किया। पहले इराक में इस्लाम फैला, फिर सीरिया और मिस्र में भी इस्लाम की पताका लहराई, लेकिन ईरान में इस्लाम को समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि सासानी शासन श्रृंखला ने पतन की ओर अग्रसर होने के बावजूद कुछ समय तक इस्लाम का मुकाबला किया, लेकिन ईरानी समाज के विभिन्न वर्गों में दूरी और सरकार से आम जनता के असंतोष और इस्लामी सेना से सासानी सैनिकों की पराजय की वजह से अंततः वर्ष 22 हिजरी कमरी में सासानी शासन श्रृंखला का अंत हो गया।
बनी उमैया के काल में इस्लाम की विजय का क्रम जारी रहा, यहाँ तक कि इस्लाम पश्चिम में स्पेन और अटलांटिक महासागर के तटों तक पहुँच गया। पूर्व में वह चीन के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। कला का प्रचार हालांकि इसी काल से आरंभ हो गया था, किंतु बनी उमैया के शासनों की ओर से इस्लामी शिक्षाओं और सिद्धांतों के उल्लंघन के कारण लोग उनसे दूर होने लगे और अंततः इस शासन श्रृंखला का भी पतन हो गया। उनके बाद बनी अब्बास शासन श्रृंखला ने ईरानियों की मदद से इस्लामी जगत की सत्ता पर कब्जा किया और लगभग उसी काल से इस्लामी ईरानी संस्कृति व कला का आरंभ हुआ।
बगदाद में ज्ञान विज्ञान और कला का महा आंदोलन आरंभ हुआ, जिसमें ईरानियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पहलवी, हिंदी, यूनानी और सरियानी भाषाओं की महत्वपूर्ण किताबों का अरबी में अनुवाद हुआ और प्रसिद्ध धार्मिक व वैज्ञानिक पाठशालाओं की स्थापना हुई। इस प्रकार से सासानी राजाओं के अत्याचारों से तंग आ चुके ईरानियों ने उस दिन का खुले दिल से स्वागत किया जो न्याय, समानता, ज्ञान व कला से परिपूर्ण था, और यहीं से ईरानी व इस्लामी सभ्यता की नींव पड़ी। बहुत से विशेषज्ञों और इतिहासकारों के अनुसार इस्लामी कला ईरान में विकसित हुई और इस महान सभ्यता के कई पहलुओं को उजागर किया गया।
चौथी और पांचवीं सदी से संबंध रखने वाले प्रसिद्ध मुसलमान दर्शन शास्त्री और इतिहासकार इब्ने खल्दून ने इस संदर्भ में लिखा है, यह एक स्पष्ट वास्तविकता है कि अधिकांश इस्लामी बुद्धिजीवी धर्मशास्त्र हो या तर्कशास्त्र, कुछ के अलावा लगभग सभी गैर अरब और ईरानी थे। हदीस के ज्ञान में दक्षता रखने वाले अधिकतर विद्वान ईरानी थे। वह आगे लिखते हैं, ईरानियों के अलावा किसी ने ज्ञान को सुरक्षित करने और उसके संकलन के लिए प्रयास नहीं किए, और इस तरह से उन्होंने पैगंबर इस्लाम के इस कथन को सिद्ध किया कि यदि ज्ञान विज्ञान सुरैया सितारे पर भी हो, तब भी फारस के पुरुष उसे सीख लेंगे और प्राप्त कर लेंगे।
इस संदर्भ में इब्ने खल्दून के कथनों पर बहुत कम लोगों ने अविश्वास प्रकट किया। ईरानी सभ्यता के विकास में ईरानियों की भूमिका के व्यापक अध्ययन की ज़रूरत है। इस भूमिका का कई पहलुओं से अध्ययन किया जा सकता है। राजनीति, सत्ता, धर्म, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा, औषधि, व्यापार, कला तथा साहित्य व भाषा जैसे क्षेत्रों में ईरानियों की भूमिका का अध्ययन करने से अधिक तथ्य सामने आएंगे, किंतु हम इस कार्यक्रम में कला व शिल्प कला पर इस्लाम के प्रभाव की चर्चा कर रहे हैं।
हम जब किसी भी चीज़ पर इस्लाम के प्रभाव की बात करते हैं तो निश्चित रूप से विशेष प्रकार के मापदंडों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस संदर्भ में मापदंडों की अधिक जानकारी के लिए कुरान मजीद की आयतों पर नज़र डालने की ज़रूरत है। कुरान मजीद ने मक्का नगर को सुरक्षित नगर कहा और यह भी बताया कि यह नगर अत्यधिक पवित्र है। सूरह बकरा की आयत नंबर 126 और सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 35 में इस नगर के गुणों का वर्णन किया गया है। हालांकि इन आयतों में भवन निर्माण का उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है और यह नहीं बताया गया है कि किस तरह से घर बनाना चाहिए, लेकिन नगर निर्माण के लिए आवश्यक कुछ गुणों की ओर संकेत जरूर किया गया है। वास्तव में कुरान मजीद नगर निर्माण और शिल्पकला को मनुष्य की एक प्रकार की विचारधारा समझता है।
इसके बाद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की जीवन शैली का उल्लेख किया जाने लगा। पैगंबर इस्लाम ने जब यसरब नगर की ओर पलायन किया तो उसका नाम मदीनतुन नबी अर्थात पैगंबर इस्लाम का नगर रखा गया। मदीना में पैगंबर इस्लाम ने सबसे पहले मस्जिद निर्माण की जगह का निर्धारण किया, जो बाद में पूरे इस्लामी जगत में मस्जिद निर्माण का आदर्श बनी। ये मस्जिद जिस ज़मीन पर बनाई गई थी उसे पैगंबर इस्लाम ने ख़रीद लिया था और फिर आम लोगों की मदद से वहाँ पर मस्जिद बनाई। इस जगह में इस्लामी इतिहास की बड़ी बड़ी घटनाओं के भविष्य का निर्धारण किया गया, इसीलिए मस्जिद को मुसलमानों के मध्य अत्यधिक पवित्र माना जाता है और मस्जिद को विशेष रूप से बनाया जाता है, लेकिन उसकी वजह से बाहरी और भीतरी रूप से उसकी सजावट एक जैसी नहीं होती, बल्कि इस्लामी क्षेत्रों में अलग अलग तरह के रूप व रंग की मस्जिदें बनाई गईं, लेकिन इन सब का उद्देश्य एक होता है और सारी मस्जिदें मुसलमानों के पवित्र स्थल काबे की दिशा में बनाई जाती हैं।
प्रसिद्ध इस्लामी लेखक नजमुद्दीन बमात ने इस्लामी नगरों नामक अपनी किताब में इस्लामी दृष्टिकोण से शिल्पकला व निर्माण कला के अर्थ पर कई विचारों का उल्लेख किया है। इस किताब के एक भाग में आया है, एक मुसलमान के लिए नगर व घर का विशेष अर्थ है, चाहे वह हेरात व समरकंद हो या इस्फहान व तहरान में। वह एक दिन में 5 बार अपने घर और नगर को भूल जाता है और वहाँ से निकल जाता है। इस दौरान में अपने मन में एक दूसरे नगर की कल्पना करता है। वह नगर पवित्र नगर मक्का है, लेकिन इस मक्का नगर में भी जो चीज़ एक मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा अहम है वह इस नगर में मौजूद मस्जिद है, जिसे मस्जिदुल हराम या काबा कहा जाता है। मुसलमान नमाज के समय उस दिशा की ओर आकृष्ट होते हैं जो पूरे विश्व के मुसलमानों का किबला और केंद्र है। वास्तव में सभी मुसलमान दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से इसी काबे की दिशा में नमाज पढ़ते हैं और इस तरह से एक ऐसा दायरा बन जाता है जिसके केंद्र में काबा होता है। इसीलिए हालांकि शिल्पकला की दृष्टि से भले ही काबा एक साधारण इमारत हो, लेकिन उससे इस्लामी शिक्षाएं और संदेश जुड़ा है और उसकी वजह से उसकी महानता और आध्यात्मिकता असाधारण है।